सूर्य जैसे अस्त होता है, उदित होता है, हमारे जीवन में भी ऐसे संयोग वियोग, हार जीत, लाभ हानि, ये सब आते रहते हैं। इनमें से कोई भी भाव स्थाई मान लेना, ये हमारी भूल है। सुख आता है, हम सोचते हैं कि अब तो कभी दुख आएगा नहीं, और हम गाफिल हो जाते हैं। दुख आता है, हम सोचते हैं कि अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, मेरा जीवन तो दुख में ही बीत जाए, तो हम विषाद करने लगते हैं। लेकिन सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन में निरंतर आते और चले जाते हैं। नारकी जीवों के शारीरिक दुखों की बहुलता के बावजूद भी क्षण भर को उन्हें भी सुख की अनुभूति होती है साता के उदय में, और देवों के साता के उदय में सुख की बहुलता होने पर भी क्षण भर को दुख की वेदना भी जब असाता का उदय आता है उन्हें भी भोगना पड़ती है। तो ये तो धूप छांव जैसे हम देखते हैं, वैसा ही है ये जीवन का कर्माश्रित सुख दुख का खेल। हमें क्या करना चाहिए इस सुख दुख के खेल के बीच में? हम तटस्थ रह सकें, हम समता भाव रख सकें, ये एकदम आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करना होता है तब मुश्किल पड़ती है। तब हम थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण क्यों ना बदल लें, उससे बहुत आसानी हो जाएगी। दो व्यक्ति एक साथ रास्ते से चले जाए, रास्ते के दोनों किनारे जनरली वृक्ष लगे रहते हैं, तो रास्ते में छाया भी हो जाती है, धूप भी रहती है। तो जब दोनों व्यक्ति पेड़ की छाया में पहुंचे तो उसमें से एक सोच रहा है कि देखो अभी पहले इतनी धूप में चल के आए, ये जरा सी छाया मिली और अब आगे फिर धूप दिख रही है, यात्रा तो बड़ी मुश्किल है। और दूसरा वो जो उसके साथ में है वो क्या सोच रहा है, इतनी बढ़िया यहां छाया मिल गई, वो थोड़ी सी धूप है, आगे फिर छाया दिख रही है, अभी पहुंच जाते हैं वहां पर। दोनों में से हम किसे श्रेष्ठ मानेंगे? जिसका सकारात्मक सोच है, जिसका ठीक दृष्टिकोण है। हमारे अपने जीवन में भी जब सुख दुख आते हैं तो हम अपने दृष्टिकोण को अगर ठीक कर लें तो कोई वजह नहीं है कि हम साता के उदय में भी और दुख का अनुभव करने वाले लोग असाता के उदय में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तमाम विपरीतताओं और विषमताओं के बीच भी हम अत्यंत अनुकूल और समता भाव से अपना जीवन जी सकते हैं। जो ऐसा प्रयत्न करते हैं वे अपने सुख का इंतजाम खुद करते हैं। हम देखें कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख मिला है वो कितना कर्माधीन है, और हमने जो सुख पाया है उसके लिए हमने कितनी मेहनत की है। मुझे हमेशा ये विचार दिन में कई बार आ जाता है। मैं भी कल परसों भी बात कर रहा था कि जरा अगर ये दृष्टि में हमारे रहा है कि कैसे मिली होगी ये मनुष्य की देह, फिर हमने इसके लिए कितना कुछ तो किया होगा तब तो मिली होगी। फिर इतने ही नहीं, मनुष्य की देह तो बहुत लोगों को मिल जाती है, कहीं वहां किनारे पे बैठे हुए दो दो पैसे के लिए, दो दो दाने के लिए मोहताज होके हाथ फैलाते होते तो वो भी मनुष्य है, हम वैसे नहीं हुए, हमको तो बढ़िया से जो है सब सुख सुविधाएं मिली हैं। पांचों इंद्रियां हमारी ठीक ठीक काम करती हैं, बुद्धि भी ठीक काम करती है, और इतने ही नहीं हमें सच्ची श्रद्धा ज्ञान और आचरण का मार्ग बताने वाले भगवान जिनेंद्र का समागम मिला हुआ है। तो हमने कितना कुछ नहीं किया होगा, बहुत किया होगा। सचमुच हम सब ने इस जो चीज पाई है उसके पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया होगा, बहुत मेहनत करी होगी, बहुत परिणामों की निर्मलता से ये चीज मिली होगी। लेकिन आज अगर वर्तमान में देखें तो क्या हमारे अपने परिणामों में आई हुई कलुषता हमें कहां ले जाएगी, इसका कभी विचार होता है? अगर ये विचार बना रहे तो संभलने के बहुत अवसर हैं भैया, वरना तो हम जब सुख आता है तो गाफिल हो जाते हैं, दुख आता है तो विषाद में और अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलें और दृष्टिकोण बदल करके सुख दुख के अवसर पर और जितना बन सके उतना शांत भाव से संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, तो ही हम इस कर्म की परंपरा को नष्ट कर सकते हैं। हमारे जीवन में सुख का कारण, अंतरंग कारण हमारे साता कर्मों का उदय है। वो साता कर्म हमारे भीतर संचित कैसे होते हैं, इसके लिए आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठे तो वो कहते हैं कि भूत वृत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति सौचमिति सद्वेद्यस्य। सातवेदनी कर्म का संचय हमारे भीतर तब होता है जब भूत वृत्यनुकंपा दान, भूत यानी प्राणी मात्र, जो 10 प्राणों के द्वारा जीता है या चेतना प्राणों के द्वारा जीता है, वो सब प्राणी हैं, जीव हैं, भूत जो भी कहना चाहे, उन सब के प्रति हमारे मन में अनुकंपा का भाव होना। और जो व्रत नियम संयम का पालन करने वाले श्रावक और साधु जन हैं, वे व्रती कहलाते हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में अनुकंपा का भाव होना चाहिए। और उनकी सेवा के लिए जो भी हम त्याग कर सकें, दे सकें, स्वपर कल्याण की भावना से वो दान भी करना चाहिए। ये हमारे लिए साता के संचय के कारण है। अनुकंपा सम्यक दृष्टि का प्रमुख बाह्य लक्षण है। जिसकी दृष्टि निर्मल होगी वही अनुकंपा कर पाएगा। दया से द्रवीभूत होकर दूसरे की पीड़ा देखकर स्वयं पीड़ा से कंपित हो जाना, ये अनुकंपा कहलाता है। दूसरे को पीड़ा ना हो इस तरह का भाव रखना, ये अनुकंपा कहलाता है। मुझे पीड़ा ना हो इसका उपाय तो मैं करता हूं, दूसरे को पीड़ा ना हो इस तरह की भावना अगर मैं रखता हूं तो साता बंधेगी। और अपने सुख के लिए जितना प्रपंच में करता हूं उतना अधिक असाता अपने हाथ से कमाता हूं। जब विजय प्राप्त करके लंका से श्री राम लौटे, सारे लोगों ने उनकी मदद की थी, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर आया, तो एक एक करके सबको बुला करके सबका सम्मान किया, लेकिन हनुमान जी को नहीं बुलाया, उनका नाम ही नहीं आया उस लिस्ट में जिसमें सम्मान किया जा रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद मुझे देख नहीं पाए होंगे, तो सभा के बीच में एक बार खड़े हो गए। तो जैसे ही खड़े हुए तो रामचंद्र जी ने कहा बैठ जाओ मुझे मालूम है। तो और आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने इतनी जो है वो इनकी सेवा करी, इतना सहयोग किया। तो पूछ ही लिया कि भगवान आप तो मेरा बहुत उपकार मानते हैं और आज जब सम्मान का अवसर है तो मेरा ही नाम
कैसे आप भूल गए, तो लिखा हुआ है श्री राम के द्वारा वाल्मीकि जी ने कहलवाया है कि हनुमान तुम्हारे उपकार से तुम्हें उन्नत हो नहीं सकता, मैं अगर ये कहूं कि जैसा उपकार तुमने मेरे ऊपर किया ऐसा ही उपकार मैं तुम्हारे ऊपर करूं, तो यह तो ठीक ऐसा ही हुआ कि जैसे मेरी जीवन साथी का हरण हुआ था तब तुमने मेरी मदद की थी, ऐसे ही जब तुम्हारे घर में कोई ऐसी विपत्ति आए तो मैं तुम्हारी मदद करूं। इसलिए मैं तो यह चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर कभी कोई विपत्ति ही ना आए, तुम्हारी विपत्ति में मैं तुम्हारा सहयोग करूं। यह कहना बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर देता है, लेकिन ये भावना भाना कि कभी विपत्ति ही ना आए, दूसरे पर विपत्ति आना नहीं आना उसके साता असाता का खेल है, हम तो सिर्फ भावना भा करके और अपने साता का उपाय कर सकते हैं। एक सम्यक दृष्टि प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने की भावना रखता है कि किसी को यहां इस संसार में दुख ना हो, सब अपने इस दुख से बच करके शाश्वत सुख को और शांति को प्राप्त कर लें। ये जो भावना है वो साता के बंध में कारण बनती है। और दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, प्रति उपकार की भावना के बिना करना, यह भी हमारे साता के संचय में कारण बनता है। अपन जो लोग प्रति उपकार की भावना से सेवा और दान देते हैं उससे साता का बंध नहीं होता, ये ध्यान रखना। वर्तमान में कितना दान देने की, कितना सेवा इत्यादि करने का प्रचार है, धर्मांतरण के नाम पर सेवा देने वाले कितने लोग हैं, बोझ चाहिए उसके लिए सेवा की बात करने वाले कितने लोग हैं, सैकड़ों लोग मिल जाएंगे तो सबको साता का बंध हो जाएगा, साता का बंध ऐसे नहीं होता। प्राणी मात्र के प्रति और जो रत्नत्रय की आराधना करने वाले, व्रत नियम संयम के रास्ते पर चलने वाले, उन सबके प्रति जो बिना किसी प्रति उपकार की भावना के जो त्याग किया जाता है, जो उसे दिया जाता है, वो दान है। दान स्वरूप किसी को दो शब्द भी कह दिए हैं प्रेम पूर्वक जिससे उसकी पीड़ा कम हो गई है, तो ये बहुत श्रेष्ठ दान है। सिर्फ कुछ धन संपदा दे देने का नाम ही दान हो ऐसा नहीं है, पैर दबा देने का नाम ही सेवा हो ऐसा नहीं है, अनुकूलता दूसरे के लिए बनी रहे इस तरह का विचार हमारे मन में है तो वो भी सेवा। गांधी जी उन दिनों जेल में थे, सत्याग्रह आंदोलन था, उनके साथ में एक अफ्रीका का कैदी भी था निग्रो, वो उनसे बहुत चिढ़ता था। कभी गांधी जी का कोई काम नहीं करता था, उनके काम बिगाड़ता जरूर था, उनको मुश्किल में डालता, गांधी जी कुछ नहीं बोलते। मंद कसाए भी हमारे अपने साता में कारण बनती भैया, तीव्र कसाए वाले के तो निरंतर असाता का ही बंध होता रहता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात के अंधेरे में और कहीं से बिच्छू निकला और उस व्यक्ति को काट दिया, बहुत वेदना। अब रात में सब सोएं या कि सेवा करें, लेकिन गांधी जी उठ करके उसके पास गए, अपने मुंह से जहां उसको बिच्छू ने काटा था उसका विष खींच करके औषधि इत्यादि लगा करके सारी रात उसके पास बैठे रहे, सेवा करते रहे। सुबह जब वह स्वस्थ हुआ तब चरणों में गिर गया कि मैं तो जब से यहां आया तब से आपके प्रति कलुषता ही रखता था, इसके बावजूद भी आपने क्या देख करके और मेरी सेवा की, मेरे ऊपर उपकार किया। तो भैया कुछ देख करके नहीं किया जाता, ये तो मेरी अपनी स्वाभाविक स्थिति है कि मैं सेवा करूं, कि मैं मेरे से जो हो सके वो सबके लिए करूं। यह जो मन में भाव है वो किसी प्रति उपकार की भावना से नहीं होना चाहिए, अगर सही है तो होता भी नहीं है। और फिर कहते हैं कि वो गांधी जी का भक्त बन गया, उनकी बहुत सेवा करता रहा। गांधी जी जब एक दिन जेल से विदा लेने लगे तो उन्हें बहुत दूर तक छोड़ने गया और गांधी जी ने अपनी घड़ी उतार कर जब उसे दी तो अत्यंत गदगद होकर के उसे हृदय से लगा करके मरण के समय भी वो उस घड़ी को अपने पास रख करके गांधी जी की सेवा की याद करता रहा कि ऐसा व्यक्ति हमने नहीं देखा, उसका जीवन बदल गया। हमारा दान ऐसा हो जो दूसरे के जीवन का कल्याण कर सके, जो दूसरे के जीवन को सच्चे मार्ग पर लगा सके। वास्तव में तो वो भाव है कि व्यक्ति यहां अपने ही दुष्कर्मों से दुख पाता है, अगर वो सत्कर्म करने लगे, मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या दे दूं उसे जिससे कि वो सच्चे मार्ग पर लग जावे, ताकि उसका कल्याण हो जावे। यह जो भाव है वो दान का भाव है, वो साता के अर्जन का कारण है। सराग संयम यह भी साता के बंध का कारण है। किसे कहते संयम? छह जीव निकाय की रक्षा करना और पांच इंद्री मन के विषयों से विरक्त रहना, ये संयम है। और ऐसा संयम धारण करने वाला जब स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, इन सब शुभ क्रियाओं में लगा रहता है तब उसे सराग संयम कहते हैं, क्योंकि संयम धारण करने के बाद भी शुभ क्रियाएं सहसा छूट तो नहीं पाती हैं। लक्ष्य तो शुद्ध का रहता है लेकिन क्रियाएं शुभ भी करना होती हैं, ज्ञान ध्यान के लिए आलंबन लेना होते हैं। वो सब शुभ क्रियाएं करते हुए वह जो सराग संयम की अवस्था है वह भी साता वेदनी के लिए ही कारण बनती है। हम जितने भी व्रत नियम इत्यादि श्रद्धा पूर्वक लेते हैं भैया, वो सब हमारे लिए साता के संचय में कारण बनते हैं। हम ये सोचते हैं कि व्रत नियम इत्यादि लेने से अरे बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अभी तो जब चाहो तब जो चाहो तब वो खा लो, जो चाहो वो कर लो, यहां तो फिर बाद में बड़ी मुश्किल होगी, सोच समझ के बहुत बंधन के साथ में करना पड़ेगा। हमें संयम कष्टकारी और बंधन मालूम पड़ता है। यहां आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जीवन को संयमित बनाना अपने जीवन को सुखी बनाने का उपाय है। और दो शब्द और बाकी बचे, शांति और शौच। शांति का अर्थ है क्रोध का अभाव या क्रोध की कषाय की मन बता। व्यक्ति का अपने आप में ही विश्राम हो। ये जो हम लोग श्रम करते हैं, ये जो सुबह से शाम तक हमारे भीतर एक दौड़ मची रहती, आकुलता मची रहती है, वो क्षोभ है। और शांति ठीक उससे विपरीत है कि हम स्वस्थ हैं, आत्मस्थ हैं, विश्राम कर रहे हैं अपने आप के स्वभाव में ही, वो शांति है वास्तव। जितने क्षण हमारे उस तरह गुजरते हैं कषायों से के अभाव में गुजरते हैं, कषाय के अभाव में तो अपने क्या गुजरेंगे, वो तो बार में उन स्थान में क्षीण कषाय के जीवों के होंगे, लेकिन कसाय के अभाव का मतलब यह है कि मैंने अपनी कसायों को बढ़ाया नहीं, मैंने उनको तीव्र नहीं किया, भैया बड़े शांत परिणाम है, ऐसा अपन कहते हैं। बस वही है कसाय का अभाव, कह लो कसाय की मंदता को ही अपन कसाय का अभाव मान लेते हैं। वह स्थिति वह भी हमारे लिए स्वयं अपन देखें कि कई बार अपन कसाय के मजबूत होकर के दूसरे से कड़ी बात कह देते हैं, बोलचाल बंद हो जाती है। भैया दूसरे से बोलचाल बंद होने पर दूसरे का घाटा नहीं होता, हमारी अपनी खुद की बोलचाल बंद हो जाती है, ध्यान रखना। हमारे भीतर की शांति भी छिन जाती है जब हमारी बोलचाल दूसरे से बंद होती, जब हमारी कसाय दूसरे पर हम प्रक्षेपित करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के प्रति जो बुरा भाव रख रहे हैं उससे दूसरे की क्षति होगी, हमारी स्वयं की क्षति होगी। इसलिए शांति यानी कसायों की मंदता जिसकी हमेशा बनी रहती है, वो व्यक्ति ही ताता का बंद करता है। एक छोटी सी घटना, बहुत पुरानी, मैं पढ़ रहा था उस समय कांग्रेस की सभा में, सभापति टंडन जी थे, नेहरू जी उपसभापति थे, तो सभापति को थोड़ा सा कुछ देर के लिए सभा से जाना पड़ा, तो उनके स्थान पर उपसभापति नेहरू जी बिठा दिए गए। त्यागी जी जो है वो किसी रूलिंग एक्ट पर कोई बहस कर रहे थे, तो नेहरू जी के पास ले जा करके वो लॉ की किताब और कहा कि ये रूलिंग एक्ट तो ये है, आपको ये रूलिंग के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। और बात बढ़ गई तो तेजी आ गई, ये जोर से बोले त्यागी जी, तो नेहरू जी भी तेजी में आ गए और अपनी पेंसिल से उनकी किताब छक्का करके नीचे गिरा दी और कहा कि ऐसी 60 किताबें रोज लिख सकता हूं, कुछ नहीं करूंगा, उठाओ जाओ। इतना कुछ कह दिया तो त्यागी जी ने भी कहा कि वहां से अगर किताब उठाई गई है तो यहां से कुछ और भी फेंका जा सकता है। तो दोनों जन के लोग बैठे थे, दोनों जन के लोग चिल्ला पड़े, माफी मांगा। उतने में आ गए टंडन जी, सच्ची घटना पड़ी थी मैंने, उतने में आ गए टंडन जी, सभापति वही थे। तो नेहरू जी उठ करके खड़े हो गए अपने स्थान से और कहा कि भाई मेरे और त्यागी जी के बीच में कुछ निजी चर्चा हो गई है, इस दौरान उसको तो यहीं छोड़ते हैं, अपन जो बहस चल रही थी उस एक्ट को लेकर के उसी पे आगे बात करते हैं। और बात आई गई हो गई, सब कसमसा करके रह गए, कुछ बड़ी ही बातें नहीं बड़ी। और इतने ही नहीं, जैसे ही वो सभा खत्म हुई तो त्यागी जी का हाथ नेहरू जी ने पकड़ा, अपनी गाड़ी में बिठाया और ले गए। क्या हुआ, जो चीज बिगड़ने वाली थी वो भी बन गई। हम तो यहाँ पर बनती ही चीज को बिगाड़ने की फिक्र में रहते हैं, कैसे हमारे अपने परिणाम कैसे आएगी हमारे जीवन में सुख साता, बताइए। हम अपने असाता को उपाय खुद करे बैठे रहते हैं। हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कसायवान हो गया है, क्रोध के वशीभूत हो गया है, तो उसके क्रोध में हम और ईंधन तो नहीं डालें, हो सके तो हम शांति धारण करें, हो सके तो हम उसको भी शांत करने के लिए उपक्रम करें और स्वयं तो कम से कम शांत रहें ही। ये प्रक्रिया ही हमें सुख देने वाली है, साता देने वाली है। भैया बिना साता के धर्म ध्यान नहीं होता, धर्म का वास्तविक स्वरूप भी अपन के थोड़ी कसाई की मंदता है, साता का उदय है तो ठीक ठीक समझ में आ रहा है, असाता का उदय आ जावे तो सुनने का भी मन नहीं होगा। इसलिए इतनी साता तो पल्ले में रखनी चाहिए जिससे कि साता और असाता की वास्तविकता का विचार कर सकें, जिससे धर्म और अधर्म की हमें समझ सूझ बनी रहे, इसलिए ये साधा आवश्यक है। वैसे तो कर्म
यही है, कर्म बंधन की प्रक्रिया नहीं बता रहा हूं कि कर्म ऐसे बांधो, कर्मों से मुक्त होने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। नहीं तो आप ये सोचो कि महाराज तो कह रहे थे कि साता के बांधवे के उपाय, कर्म बांधवे के उपाय बता रहे थे सभा में, कर्म बांधने के उपाय नहीं बता रहे भैया। कर्म को काटने के लिए क्या करना चाहिए, हमने कैसे कैसे भाव करके कर्म बांध लिए हैं, अब हम कैसे परिणाम करें जिससे कि इन कर्मों से हम मुक्त हो सकें। सबसे पहले तो अशुभ से मुक्त हुआ जाता है, और शुभ से मुक्त होने का उपाय नहीं करना पड़ता। शुभ से तो प्राणी शुद्ध को प्राप्त करने पर स्वयमेव मुक्त हो जाता है। शांति के बाद रखा है शौच शब्द। शौच के मायने हैं निर्लोभ वृत्ति, संतोष भाव। हमें यह लगता है कि हम जितनी लोभ लालच करके सुख के साधन जुटा अपने पास रख लें, उतनी साता रहेगी, उतना सुख मिलेगा। 99% लोगों के जीवन में यही देखने में आता है कि शायद सोच यही है कि जितनी सुख सुविधा की सामग्री मेरे पास होगी उतना मैं सुखी होऊंगा। और कितना कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी हमारे अपने जीवन का अनुभव है कि सुख फिर भी नदारद है, तो इसका मायना है कि कुछ और बात है। वो आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठने पर मालूम पड़ती है कि जितनी जिसकी निर्लोभ वृत्ति होगी, जितनी जिसकी संतोष प्रवृत्ति होगी, वो उतना सुखी होगा। चीजों के होने नहीं होने से सुख का और दुख का कोई संबंध नहीं। हमारी आसक्ति हमारे दुख का कारण बनती है, हमारी अनाशक्ति हमारे सुख का कारण बनती है। ये बहुत बहुत मोटी सी चीज है समझने की। हमें अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि समता हमारा लक्ष्य है अगर, तो उसकी प्राप्ति के लिए हमारे मन में संतोष भाव तो हो, जो प्राप्त है उसके प्रति हम संतोष पूर्वक उसका उपयोग करें, जो प्राप्त नहीं है उस चीज के असंतोष में अपना जीवन व्यतीत ना करें। इतना उपक्रम, इतना पुरुषार्थ तो हमें करना ही चाहिए। हम सब ने किया होगा ये पुरुषार्थ, तब तो आज हमारे जीवन में थोड़ी सी साता देखने में आती है। हमने किया होगा प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव रखा होगा, हमने प्रति उपकार की भावना के बिना दूसरे की सेवा करी होगी, हमने व्रत नियम संयम जीवन में अंगीकार किया होगा, हमने कषायों को मंद रखा होगा, हमने संतोष पूर्वक जीवन दिया होगा, तब आज हम मनुष्य की पर्याय को पा करके और शांति पूर्वक सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उत्सुक हैं। आगे भी हमें कम से कम ऐसी अवस्था प्राप्त हो जिससे कि अपना कल्याण करने की हमें सुविधा हो सके, इतना उपाय तो हमें करना ही चाहिए भैया। संतोष पूर्वक जीवन जीने का एक छोटा सा उदाहरण दूं और मेरे ख्याल से पर्याप्त है। विचार करने के लिए छोड़ देता हूं आपको ये सब चीजें। पता नहीं आप होमवर्क करते हैं कि नहीं करते, मैं देखता तो नहीं हूं कि किसी ने किया कि नहीं किया, पर करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा खुद ही कि हाँ सचमुच ये चीजें तो हम आसानी से कर सकते हैं। अज्ञानतावश कई बार हम चूक जाते हैं, पर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो क्षण भर को ऐसा करके देखने में कोई हर्जा नहीं है कि शांति पूर्वक चार चीजें कल तक लगता था कि नहीं है तो कैसे चलेगा, अब चार नहीं है तो अच्छा चल रहा है, झगड़े ही नहीं। ऐसा भाव आ जाए। एक व्यक्ति भोपाल में थे तो उनके तीनों बेटियां थी, बड़े दुखी थे वो। हाँ, कमी आते थे वो, स्वाध्याय वगैरह में भी कम आते थे। उनको लगता था कि लोग पूछेंगे, अरे आपके यहाँ बेटा नहीं। ऐसा चलता है लोगों को बहुत, अभी भी अपन अभी भी 21वीं शताब्दी में बैठे हैं, पर अभी भी अपने मन में इस तरह की बातें रहती हैं। तो वो ऐसे आए दर्शन के लिए, बात चली तो बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा कि मेरे एक भी बेटा नहीं हुआ, तीनों बेटियां हैं। मैंने कहा आप सबसे ज्यादा सुखी हैं। अरे चले आप ऐसी बात कह रहे हैं, सारी दुनिया तो कहती है कि कौन करेगा फिर आपका, ये तो सब चली जाएंगी। हमने कहा आप सबसे ज्यादा सुखी हैं, जरा सा आप विचार तो करिएगा, सबका ब्याह करने के बाद फिर कोई लायबिलिटी नहीं रही आपकी, और बहुत आसानी से आप नियम ले लीजिएगा मेरे पास कि इन सबके ब्याह के बाद हम दोनों प्राणी आपके पास आके रह जाएंगे, ना अपने बेटों के बेटे पालने की जिल्लत और ना बेटे मिटाने।
बैठ करके तो इन तीनों को मैं आराम से 25-25 लाख भी दे दूं और अपने लिए बचा लूं, तो उससे भी ज्यादा है। अब काय के लिए दुकान खोल के बैठता हूं सुबह से शाम तक, वो मंदिर तक नहीं आ पाता। समझ में आ गई? वही चीज पहले असंतोष का कारण बन रही थी, हमारे सोच का ढंग ठीक नहीं होने से। हम थोड़ा सा अपना सोच बदल लेवे तो वही चीजें इतना संतुष्ट करती हैं, नहीं तो पूरा जीवन जो है छोटी छोटी चीजें जो प्राप्त नहीं हो पाई उनके असंतोष में ही गुजर जाता है। और हम अपने हाथ से अपने लिए असाता कर्म बांधते चले जाते हैं। भैया असाता कर्म से बचना हो और साता का उपाय करना हो तो संतोष पूर्वक अपना जीवन जीने का पुरुषार्थ करना चाहिए, इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को संतोष पूर्वक जिएंगे और अपने जीवन में समता भाव लाने का पुरुषार्थ भी करते रहेंगे। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता
हो, अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फूल झड़िया,
बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां,
करते वो शम की अविन शर्मणिया,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पच पंची गुरुवर प्रणाम। मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो मानु शिव कानी है
छहो द्रव्य जान वेखो बंध विधि भान वेखो सपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है
अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काबू न सताए वेखो भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की दीपावली सारे देश में अपनी अपनी तरह से सभी लोग मनाते हैं। जैन धर्म के अनुसार दीपावली का पर्व भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव का प्रतीक है और इसीलिए हम भगवान ने आज कार्तिक कृष्णा अमावस्या को प्रत्यूष की वेला में परिनिर्वाण मोक्ष सुख का अनुभव किया उसके प्रतीक स्वरूप हम भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए भगवान की पूजा आराधना के साथ साथ मोदक चढ़ाते हैं। मुद धातु हर्ष की प्रतीक है इसलिए मोदक हमारे हर्ष का प्रतीक है कि भगवान ने एक ऐसा महान कार्य किया जो उनके अपने जीवन के लिए ही नहीं प्राणी मात्र के लिए भी दिशा देने वाला है। और इतना ही नहीं इसी कार्तिक कृष्णा अमावस्या के गोधूली वेला में प्रथम गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसलिए गोधूली की वेला में सरस्वती पूजन करके और हम केवल ज्ञान की प्राप्ति की भावना भाते हैं और केवल ज्ञान के प्रतीक रूप दीप प्रज्वलित करते हैं। दीपावली जहां एक ओर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव की प्रतीक है वहीं वह जो ज्योति है जलता हुआ दीप है वह गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का प्रतीक है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का यह ज्योति पर्व है या ये कहें कि आत्म हित के साथ साथ लोक कल्याण की भावना का यह पवित्र अवसर है। भगवान महावीर स्वामी ने अपना आत्महित किया और गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान के द्वारा अपने आत्महित के साथ साथ लोक हित की वाणी भी आज के दिन दी। इसलिए हमें इस पर्व से प्रेरणा लेनी चाहिए, विश्वास की प्रेरणा लेनी चाहिए, ज्योति की प्रेरणा लेनी चाहिए, स्नेह की परस्पर, जिससे कि हमारा और सबका जीवन श्रेष्ठ बने। हम लोग अपने घर में जब चाहे तब दीपक जला लेते हैं, वह दीप दीपावली का दीप नहीं कहलाता। दीपावली का दीप कैसे बन जाता है कोई दीप, तो उसके पीछे इतना ही है कि एक निश्चित मुहूर्त में और एक ही भावना के द्वारा जो सब लोग दीप जलाते हैं, तब वह अपने घर में जलाया हुआ दीप भी क्योंकि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखने वाला है, इसलिए वह दीप दीपावली का दीप या केवल ज्ञान का दीप ऐसा प्रतीक बन जाता है। हमें दीप में क्या भरना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दीप में हम चाहें तो आत्मीयता भरें, दीप में हम चाहें तो परोपकार, स्नेह और परस्पर करुणा भाव, मैत्री भाव भरें, और हम चाहें तो घृणा, द्वेष और तिरस्कार भी उस दीप में भर सकते हैं। जैसी भावना का तेल होगा वैसा ही उस दीप से हमें ज्योति मिलेगी। इसलिए बहुत सावधानी का पर्व है कि हम आज के दिन जो दीप जलाएं उसमें हम आत्मीयता, मैत्री, सद्भाव का तेल भरें, जिससे कि हमारा जीवन और हमारे आसपास का परिवेश सुखद और अच्छे भावों का अनुभव कर सके। मुझे याद है जब 1986 में आचार्य महाराज की आज्ञा से गढ़ा कोटा में चतुर्मास हुआ, तब वहां कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आकर के मुझसे कहा कि महाराज दीपावली तो हम हमेशा मनाते हैं, कोई और बात बताइए जिससे कि हमें ये दीपावली हमेशा स्मरण में रही आवे। तो बहुत सोचने के बाद मैंने उन्हें कहा कि भाई आपके इस छोटे से गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी दीपावली ना मनाई होगी, जिनके पास दिया खरीदने, बाती लगाने, तेल भरने के लिए भी पैसा नहीं होगा, ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें दीपावली के दिन और अपना पेट भरने के लायक भोजन भी नहीं होगा। जाओ आज ही से महीने भर पहले से ऐसे लोगों को खोज तो लो थोड़ा। तो 4-5 लोग थे वो, उन्होंने ये बात उनको अच्छी लगी, घूम फिर करके ढूंढा तो 12 लोग ऐसे मिल गए उस गांव में जो सचमुच जिनके पास कुछ भी नहीं है, रोज के लिए 4 दाने जैसे तैसे करके प्राप्त कर लेते हैं, अपने देह की ऐसी स्थिति नहीं है कि यहां वहां जा करके कुछ काम कर सकें। यहां तक कि कई लोग ऐसे थे जो यहां से वहां जा करके 4 पैसे भी नहीं मांग सकते हैं, ऐसी उनकी शरीर की अवस्था थी। उनको ढूंढ करके फिर कहा कि महाराज अब क्या करें, तो जाओ उन सबके पास आज घंटे 2 घंटे में ऐसा ही करो, उनके साथ अपनी दीपावली मना करके आओ। बहुत कठिन काम है लेकिन सद्भावना और मैत्री का जो भाव है
वो ऐसे कठिन काम को भी आसान कर देता है। वास्तव में कहने में बहुत आसान है सद्भाव, लेकिन जब हमारे मन जीवन में आवे तो ही वो श्रेष्ठ माना जाएगा। उन सब ने और जा करके और जब उन लोगों के पास दीप जलाया, उन्हें एक एक कंबल दिया और छोटा सा पैकेट जिसमें कि थोड़ा सा आहार था, भोजन था, वो दिया, तो उन लोगों ने पैर छू करके ये कहा कि आप तो देवता हैं हमारे लिए, हमने तो वर्षों से अपने जीवन में अंधेरे में ही बिताए हैं, किसी कोने में पड़े रह करके लोगों के घरों की बिजलियां देखकर, उनके घर की रोशनी देख करके हमने अंधेरे में पड़े रहकर अपना जीवन बिताया। हमारे आसपास भी कोई दीप जला सकता है, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। जब उनसे कहा कि इसमें से कुछ भोजन कर लो, उन्होंने थोड़ा सा निकाल के खा लिया। कहा कि अरे आप पूरा क्यों नहीं लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए 10-12 दिन तक चलेगा, आज ही कैसे पूरा खा लें, थोड़ा थोड़ा करके और खाएंगे निश्चिंतता से। बताइए, ऐसी स्थिति के लोग भी हमारे आसपास होते हैं और हम उन्हें भुला करके और अपने घर में और एक नहीं सैकड़ों दीपक जलाते हैं और कितनी अनाप शनाप धन संपदा पटाखे आतिशबाजी चला करके नष्ट कर देते हैं करोड़ों रुपया, लेकिन किसी के लिए 2 जून का भोजन भी नहीं है, इस बात का हम ध्यान भी नहीं रखते हैं। जबकि आज भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी दोनों हमें यही प्रेरणा देते हैं कि आत्म कल्याण के साथ साथ लोकोपकार की भावना रखना, यह ही हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है भाई। इसलिए मैं इतना ही संक्षेप में आपसे कहूं कि हम सब आज अपने आत्म कल्याण के लिए प्रेरणा लें और अपना आत्म कल्याण करते हुए जितना बन सके यथाशक्ति परोपकार की भावना भी अपने जीवन में लाएं, तो ही हमारा यह ज्योति पर्व, तो ही हमारा यह निर्वाण दिवस मनाना हमारे जीवन के लिए सार्थक होगा। कहीं पर मैंने 2 साल पहले बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, तो वो आपको सुनाए देता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि यदि ऐसा हो जावे तो हमारी दीपावली सार्थक हो सकती है। ये कागज हमारे पास से आप बाद में लेकर के नोट करके रखना, एक बार में याद नहीं रहेगा, बार बार इसको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ सचमुच ऐसे ही हमें दीपावली मनानी चाहिए। कहते रंगोली बनाओ घर के सामने, तो संस्कार की रंगोली बनाना। ये रंग लाकर के रंगोली तो बहुत बनाई, अपने जीवन को संस्कारित करने की रंगोली बनाना, दीपक जलाना विश्वास का और घर सजाना सद्भाव से। और इतना ही नहीं, जब पटाखे और फुलझड़ी चलाने का मन हो तो प्रसन्नता के पटाखे फोड़ना और प्रेम की फुलझड़ी चलाना। दीपावली ऐसे मनाना, बंधनवार द्वार देहरी ये सब सजाएं, तो ज्ञान के बंदरवार हो, विनय से देहरी सजी हो और सौभाग्य का द्वार हमेशा खुला रहे। घर के भीतर पकवान बने तो दान और दया के पकवान बने, कलश रखा जाए तो परंपराओं का, अच्छी परंपराओं का कलश रखें, श्रीफल चढ़ाएं तो अपने जीवन के कल्याण के संकल्प का श्रीफल चढ़ाएं, और अगर मंत्रोच्चार करना है तो प्राणी मात्र के कल्याण का मंत्रोच्चार करें, मंत्र बोलें तो प्राणी मात्र के कल्याण का मंत्र बोलें, आदर्शों का ओम और नैतिक मूल्यों का स्वस्तिक, और आराधना हो अगर मुक्ति की तो सार्थक होगा हमारा ये दीपावली का पर्व। इसलिए भाई, पिछले दिनों में अपन सब ने बैठ करके क्या सीखा, क्या पाया, ये स्वयं हम देखें अपने भीतर झांक करके, और आज के दिन उस सीखे हुए को उस पाए हुए को और अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगाएं, ताकि हमारा जीवन अच्छा बन सके, जिससे कि हम महसूस कर सकें कि हाँ सचमुच हमने अपने इस जीवन को पाकर उसे व्यर्थ नहीं गमाया, हमने भगवान के रास्ते पर चलकर उस जीवन को सार्थक बनाया है। इसी भावना के साथ अभी तो जा नहीं रहा हूं, अभी तो अपन को और भी समय थोड़ा सा है, जिसमें कि अपन बैठ करके इस संयम के उपकरण को आदान प्रदान करेंगे। सब लोग खूब अपना मन बना लें, जिन लोगों ने पहले भी आरिका माता जी वगैरह के चतुर्मास में और व्रत नियम लिए हैं वे सब भी, और आगे जो लोग और भी नियम लेंगे वो सब मिल करके, और अपन सब बैठेंगे। अभी तो अपन ने बहुत प्रकार से इन चीजों को समझा और सीखा है, अब उस दिन अपन देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आसपास संयम को लेने वाले लोग होंगे, जैसे कि बच्चों के सम्मान के लिए 150-200 लोग और अपने जीवन को नियमित बनाने के लिए तत्पर थे, ऐसे ही देखेंगे अपन उस दिन कि हम सब कितने लोग आतुरता के साथ अपने कल्याण के लिए संयम का व्रत लेने के लिए आतुर हैं। वह दिन अपन जो है संयम के दिन की तरह मनाएंगे, तो उसके लिए भी अब अपन तैयार रहें, और फिर उसके बाद जैसी आप सबकी भावना है और आपने आचार्य महाराज के पास भी जाकर उसे व्यक्त किया है, जो श्री गुरु की जैसी आज्ञा होगी वो मुझे सिरोधारी है, और मैं जैसा भी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय।
अब